फिर आगे क़यामत का मंज़र। अब यहाँ से सूरत का तकरीबन आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की कुछ बातें। सूरत का नाम भी मायदा इन्हीं आयात में से है कि जिसमें किस तरीके से हज़रत ईसा से उनकी कौम ने कुछ मुतालबे किए थे। यकीन कीजिए कि इतना स्ट्रॉन्ग ये हिस्सा है कि आपको मुझे इस हॉल से निकाल कर मैदान हशर में खड़ा कर सकता है। शर्त यह है कि हम पूरी तवज्जो के साथ देखें, सुने और साथ से दुआ करें कि अल्लाह उस दिन हमें रुसवा न करना। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फयकूलु माज़ा उजिबतुम। जिस रोज अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, यानी जब तुमने अपनी अपनी कौमों को मेरा पैगाम दिया, हिदायत की तरफ बुलाया, तो क्या जवाब मिला। तो वर्ज करेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानने वाले। ये बात क्यों कहेंगे अंबिया किराम? आप देखिए कि यहाँ से आपको अदब दिखता है। अल्लाह सुबहान तला से बात करना ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला नबियों से क्यामत के दिन पूछ रहे हैं, सुनाओ भाई व्हाट वाज द रिस्पांस, तुम्हें क्या जवाब मिला। और नबियों को पता था, लेकिन घबराहट की वजह से और ताजीम की वजह से और अदब की वजह से क्या कहेंगे, ला इल्म लना, हमें पता ही नहीं है। यहाँ से एक छोटी सी चीज़ नोट कीजिए, इल्म और अदब साथ साथ, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। इल्म उसको नहीं मिलता जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत क्विक माइंडेड हो, बहुत अच्छा लिख सके, बहुत अच्छा बोल सके। इल्म उसको मिलता है जो जितना बादब हो, और बादब कैसे, अंदर से टूटा हुआ, आजिज, नरम। पीछे आपने फरिश्तों का तस्करा पढ़ा, जब अल्लाह ताला ने उनसे पूछा तो क्या कहा उन्होंने, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह हमें तो वही पता है जो आपने दिया। सहाबा किराम को देखिए जो इस पारे के हीरोज हैं, क्या कहा करते थे जब नबी सल्लम उनसे कोई बात कहते, क्या कहते थे, अल्लाह हुआ रसूल हुआ आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। सब कुछ पता था फिर भी कहते थे हमें नहीं पता। बाद में असलाफ को देखिए, हमारे उलमा और आयमा कराम का क्या शगल था, बड़ी बड़ी बात होती थी, किसी भी बड़े इल्म वाले के पास पहुंचते तो आके कहते हमें नहीं पता, सवालिया जवाब में पूछ लेते थे लेकिन उनके ऊपर तनकीद नहीं करते थे। आज हमारा हाल क्या, सवाल कोई किसी से पूछे, जवाब सारा हॉल दे रहा होता है। महफिलों में आप देखिए खवातीन इस तरह सारे राय फरमा रही होती हैं जैसे किसी जगह से डिग्री लेकर आई हैं मुफ्तिया की, या फिर वो शेखा बन गई। याद रखिए, कम बोलने वाले ज़्यादा गहरे होते हैं, खाली बर्तन ज़्यादा खनकता है। जो हर वक्त शोर मचा रहा है, हर वक्त चीख रहा है, अंदर बड़ाई का एहसास है, मुझे बहुत आ गया, मुझे बड़ा आ गया, क्या आ गया आपको? जिसको तमीज़ नहीं, जिसको अदब नहीं, जिसको सलीका नहीं, उसको कुछ नहीं आता। तो क़यामत के दिन अंबिया कराम अल्लाह के सामने इस तरह से घबरा रहे हैं, कहते हैं अल्लाह हमें तो कुछ खबर ही नहीं। फिर तसव्वुर करो उस मौके का जब अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी इस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी, मैंने रूहे पाक से तेरी मदद की थी, तू गहवारे में भी लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी, मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी, और तू मेरे हुक्म से मट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता था और इसमें फूंकता था और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता, तू मादरजा दंदे और कोड़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था, तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था। फिर जब तू बनी इसराइल के पास सरीख निशानियां लेकर पहुंचा तो जो लोग इनमें से मुनकर हक थे उन्होंने ये कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा कुछ नहीं, और मैंने ही तुझको इनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। हवारियों के सिलसिले में ये बात भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ईसा इब्ने मरियम, क्या आप कर अब हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान उतार सकता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा हम बस ये चाहते हैं कि इस ख्वान में से खाना खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ कहा हमसे कहा वो सच है और हम इस पर गवाह हों। इस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, खुदाया हमारे रब, हम पर आसमान से ख्वान नाजिल कर जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पा जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमको रिस्क दे और तू बेहतरीन रासिक है। अल्लाह ने जवाब दिया, क्या जवाब था, قال الله اني منزلها عليكم, मैं इसको तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, मगर इसके बाद जो तुम में से कुफर करेगा मैं इसे सख्त सजा दूंगा, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को दुनिया में ना दी हो। गरज जब ये एहसानात जात दिलाकर अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, आप जरा यहाँ थोड़ा सा हजरत ईसा की पोजीशन को सोचें। आपको समझ तो आ ही रहा है ना, कियामत का दिन है, आपका मेरा जो हिसाब होना है वो तो होना ही है, नबियों का हिसाब हो रहा है। आज आप देखिए कि हजरत ईसा के नाम पर लोगों ने क्या क्या अकायद घड़ लिए, ईसा को खुदा कहा, सन ऑफ गॉड कहा, क्या कुछ कहा, अल्लाह को सब पता है। क्यामत के दिन ईसा से पूछ रहे हैं, क्या सुनिएगा, क्या तूने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो? तो वो जवाब में अर्ज करेंगे कि सुबहान अल्लाह। यहाँ से ईसा का अदब देखिए, सुबहान अल्लाह कहना असल में इस बात की दलील है कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता बल्कि आपको बड़ा समझता हूँ। मेरा ये काम ना था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ना था, अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको ज़रूर इल्म होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है, आप तो सारी पोशीदा हकीकतों को जानने वाले हैं। मैंने उनसे उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने हुक्म दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब है। हाईलाइट करें ईसा क्या कह रहे हैं, वो मेरा रब है, ये नहीं कह रहे मैं रब हूं और तुम्हारा रब भी। मैं उसी वक्त तक उनका निगरान था जब तक कि मैं उनके दरमियान था जब आपने मुझे वापस बुला लिया, किधर, आसमान पे। तो आप इन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीजों पर निगरान है। अब अगर आप इन्हें सजा दें तो वह आपके बंदे हैं, जरा नबी का दर्द देखिएगा। कह तो ये रहे कि अल्लाह तो जो मर्जी कर, लेकिन इशारा किया कि इनको माफी कर दे। कैसे, अगर आप सजा दें तो आपके बंदे हैं और अगर आप माफ कर दें तो अब गालिब और दाना है। तब अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो दिन है जिसमें सच्चों को इनकी सच्चाई नफा देती है। इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहाँ वो हमेशा रहेंगे। और सबसे बढ़कर हाईलाइट कीजिएगा, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो उससे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही है बहुत बड़ी कामयाबी। आप देखिए कि पूरी पेशी थी, अदालत का मंजर जहन में आता है, जब वहां ऐसे नबियों से भी सवाल जवाब होने हैं, मुझसे आपसे नहीं होंगे। आप देखिए कि आज बहुत आसान है, लोग क़यामत के नाम पे फिल्में बनाते, नावल हैं, हीरोइन को क़यामत कहा जाता है, खूबसूरत औरतों को क्या क़यामत लग रही हो, क्या गजब ढा रही हो, क्या बिजली कूदी, जब असल क़यामत आएगी लग बता जाएगा। नबी सल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन किसी को बात करने का यारा ना होगा, खामोशी होगी मैदान हशर में, सिर्फ नबी बोलेंगे और अल्लाहुम्मा सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लम, ये सब बोलती हुई जुबानें कट जाएंगी, ये चर चर करती जुबान आज अल्लाह का हुक्म सुन के आगे से 10 बातें करते हैं, क्या हरज है, कुछ नहीं होता, ये है वो है, मौलवियों ने मुश्किल कर दी, वहां सब चुप। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु अर्रहमानु व क़ाला सवाबा, कोई कलाम नहीं करेगा और जो बात करेगा वो सीधी तीर की तरह सीधी बात करेगा, हैंकी पैंकी नहीं होगी, इधर उधर की बातें नहीं मारेंगे, हमारा क्या हाल होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तवील रिवायत आपने कई बार सुनी होगी कि क़यामत का दिन होगा और हिसाब ही नहीं शुरू हो रहा और लोग परेशान हैं, आखिर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपकी तौबा कबूल की, चलिए ज़रा सिफारिश कर दे। अब ये नहीं सिफारिश कि जन्नत मिलेगा जहन्नम, सिर्फ इतनी सी सिफारिश है कि हिसाब शुरू हो जाए, जिसको आप कहते हैं ये खिड़की खुल जाए, उम्मीद तो लग जाए कि हमारा नंबर आने वाला है। आदम कहेंगे ना 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 ना, आज मैं नहीं बोल सकता, आज अल्लाह बड़े गुस्से में, मैं नहीं बोल सकता, मैंने दरख्त का फल चख लिया था, पता है कि अल्लाह ने माफ कर दिया है, पर उस दिन की दहशत इतनी है कि लगेगा शायद अल्लाह आज फिर ना पूछ ले। नूह के पास जाइए, 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग की, लोग हजरत नूह के पास जाएंगे, सेम बात उनसे कहेंगे, वो कहेंगे तौबा तौबा, मुझे आज अल्लाह से बड़ा डर लग रहा है, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर ली थी जो मुशरिक था। आप इब्राहिम के पास जाइए, और इब्राहिम के पास जाएंगे सब कुछ होगा, ना जी ना, मुझे अल्लाह से डर लगता है। अब देखिए पूरा कुरान इब्राहिम की सिफतों से भरा पड़ा, लेकिन इब्राहिम का हाल क्या, कहते मैंने जिंदगी में 3 झूठ बोल लिए थे तो मुझे उन झूठों का डर लग रहा है, अल्लाह ताला कहीं मुझसे उसके बारे में ना पूछे, सिर्फ 3 झूठ और वो तीनों तौरिया थे। इन्नी सकीम, बीमार कह दिया था, हालांकि वो बीमारी कैसी थी, रूहानी थी, शिर्क के माहौल में एक ईमान वाला कभी भी सेहतमंदी की कैफियत नहीं रखता। बीवी को बहन कह दिया क्योंकि उस वक्त एक ईमान वाली वही थी दुनिया में, सितारों को देखकर कह दिया कुछ, यानी बुत तोड़े तो कहा कि जी बड़े ने तोड़ दिए, इशारा था कि अल्लाह अल्लाह के हुक्म से हुआ जो हुआ है। लेकिन सोचिए कि इब्राहिम जैसा नबी, तीन झूठ जो झूठ नहीं थे उस पर डर रहे, तो आज मेरा आपका क्या हाल होना उधर। एक एक नबी के पास जाएंगे और सब परेशान होंगे, तो लिहाजा उस दिन को हल्का ना समझें। और आप देखिए मेरा आपका गोल क्या होना चाहिए, कि हमारे लिए भी अल्लाह यही कह दे कि रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ वो उससे राजी हुए। सहाबा किराम पे आज हम बात कर रहे हैं ना बार बार, तो सहाबा किराम को भी ये लकब कुरान में मिला हुआ है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फतह में। तो दुआ कीजिए जिंदगी ऐसी बसर कर जाइए कि अल्लाह राजी हो। और आखिरी आयत दिल खोलने वाली, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा फीहिन वहुवा अला कुल्लि शयइन कदीर। जमीन व आसमान और तमाम मौजूदात की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये थी सूरत अल माईदा, तकवा से भरी हुई, आपको मुझे अल्लाह का खौफ दिलाने वाली तिलावत सुनते हैं इन आखिरी आयात की। और साथ ही साथ अपना मुहासबा करेंगे कि इस सूरत में तकरीबन 19 मरतबा तकवा का जिक्र आता है। मेरे अंदर कितना तकवा आया है, मेरी ज़िंदगी में हिदायत के कितने मौके आते हैं, मेरा उसके ऊपर क्या रद्द अमल होता है, मैं ऐसे मौक़ों पे क्या करती हूँ, खुद इख्तसाबियों के साथ सुनते जाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرے، ہمیشہ قرآن پڑھنے کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیا کرے، آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کے دل قرآن کی آتے سن کے نرم پڑتے ہیں، دب جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یہ کیا قرآن پڑھا کہ اگر ہم نے پڑھ کر اس میں سے صرف گنتی ہی رکھی، کتنے پارے پڑھ لیے، ابھی تک ہم شاید کتنے قرآن پڑھ چکے ہوتے اگر ہم ہر روز آٹھ آٹھ سوارے، پانچ پانچ سوارے، ہر بندہ اگر دو دو تین تین بھی پڑھے، آپ یہاں سے کتنے قرآن پڑھ کے اٹھیں گے. لیکن وہ قرآن ہی کیا جو آپ کے دل کو نہ چھیڑے، جو آپ کے عمل کو حرکت نہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دل کو بدل دے.